रेहान को देखते ही अंशिका ने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया और सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोली, चाचू। उसकी मीठी सी आवाज़ सुनकर रेहान के लब मुस्कुरा उठे। उसने उसे शान की गोद से ले लिया और उसको प्यार करते हुए बोला, आ गई हमारी डॉल, चाचू आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। पर हमने तो सुना था कि हमारी डॉल अपनी मम्मा के साथ रेडी हो रही है, फिर आप अपनी डैडी के साथ कैसे आ रही हैं? अंशिका ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मम्मा ने अंशु को रेडी किया, फिर वो बेबी को डैडी को देकर चली गई। उसकी बात सुनकर सबकी नज़रें शान की तरफ चली गईं। उनकी नज़रों को खुद पर टिका देख शान ने चिढ़कर कहा, अब आप सब मुझे यूं क्यों घूर रहे हैं? मुझे क्या पता कहाँ गई है, होगी यहीं कहीं, आ जाएगी खुद। यहाँ से जाने के लिए थोड़े ना मुझसे शादी की है उसने। लग्जूरियस लाइफ फ्री में बिना किसी मेहनत के जीने के लिए मिल रही है, इससे ज़्यादा किसी को भला क्या चाहिए? उसके जवाब देने का लहजा देखकर रश्मि हैरान हो गई। वहीं अर्पिता जी ने शान को घूरते हुए गुस्से से कहा, शान कम से कम बोलने से पहले ये तो देख लीजिए कि क्या और किसके बारे में बोल रहे हैं। शान ने भी गुस्से में कहा, प्लीज़ बड़ी माँ मुझसे ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, मैं आपको सब पहले ही बता चुका हूँ, तो आगे से उससे जुड़ी किसी बात के लिए मुझसे सवाल मत कीजिएगा, वरना ऐसा ही जवाब मिलेगा। वो सुभाष जी के कमरे की तरफ बढ़ गया, पर वो कुछ कदम चला ही था कि सामने से आती आरवी पर उसकी नज़रें चली गईं, जो सुभाष जी को व्हीलचेयर पर बिठाकर ला रही थी, और दोनों शायद कुछ बात कर रहे थे, इसलिए दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। आरवी को उनके साथ देखकर शान की भौहें तन गईं। आरवी की नज़रें जब उस पर पड़ीं तो उसके कदम ठहर गए। उसके एकदम से रुकने पर सुभाष जी ने सवाल किया, क्या हुआ बेटा? आरवी ने शान पर से नज़रें हटाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। वो फिर से आगे बढ़ी, पर उसकी धड़कनें अब सामान्य से तेज चल रही थीं, क्योंकि सामने से शान गुस्से से उसके तरफ ही आ रहा था। बाकी सबकी नज़रें भी शान और आरवी पर ही टिकी हुई थीं। शान उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर उसे घूरने के बाद सुभाष जी के सामने घुटने के बल बैठ गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुड मॉर्निंग डैड। सुभाष जी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग बेटा। शान खड़ा हुआ, आरवी को घूरा तो उसने व्हीलचेयर छोड़ दी। अब शान उन्हें लेकर आगे बढ़ गया और उनसे बात करने लगा, और आरवी सूनी आंखों से उसे जाते हुए देखने लगी। वो एकदम से उदास हो गई थी। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने सर घुमाकर देखा। सुयश जी उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वक्त दीजिए उन्हें, वो भी आपको समझने लगेंगे। ऐसे उदास होने से कुछ नहीं होगा, आपको कोशिश करनी होगी उनके दिल को जीतने की। चलिए अब चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, हमें पता चला है कि आज नाश्ता हमारी बेटी ने बनाया है। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर आरवी की मायूसी पल में गायब हो गई और होंठों पर मुस्कान बिखर गई। जी बड़े पापा, वो बड़ी माँ ने कहा कि आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। चलिए, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं आपके हाथ का स्वाद चखने के लिए। आरवी मुस्कुराकर उनके साथ आगे बढ़ गई। दोनों बाकी सबके पास पहुँचे तो अर्पिता जी ने रश्मि को देखकर मुस्कुराकर कहा, ये हमारे पति हैं, शान के बड़े पापा। फिर उन्होंने सुयश जी को देखकर रश्मि की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये आरवी की बेस्ट फ्रेंड है रश्मि। रश्मि ने उन्हें हाथ जोड़कर बड़े अदब से नमस्ते किया, तो उन्होंने भी मुस्कुराकर उसको सदा खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया। शान तो सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया था, तो बाकी सब भी उस तरफ चले गए। सब अपनी अपनी चेयर पर बैठे। रश्मि अर्पिता जी के पास बैठ गई, वहीं रेहान शान के बगल में बैठ गया और उसकी दूसरी तरफ अंशिका बैठी हुई थी। आरवी आगे आकर सबको सर्व करने लगी, तो ये देखकर शान तेज आवाज में चीखा, सौरव। उसके तेज चीखने से सब चौंक गए। सुयश जी ने उन्हें देखकर सवाल किया, क्या हुआ बेटा, आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं? शान ने उन्हें देखा, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही एक सर्वेंट जिसका नाम सौरभ था उसके सामने हाजिर हो गया और सर झुकाकर बोला, जी सर आपने बुलाया। शान ने गुस्से से उसे घूरते हुए सवाल किया, कहाँ थे तुम? उसके गुस्से से वो डर से कांप उठा और झट से बोला, रसोई में। शान ने फिर से गुस्से में सवाल किया, आज खाना किसने बनाया है? दोनों ने सर उठाकर आरवी को देखा, जो खुद हैरान परेशान से शान को देख रही थी। बाकी सब भी परेशान से उसे देख रहे थे। सौरभ की डरी हुई शक्ल देखकर अर्पिता जी ने उनके बदले जवाब दिया, आरवी ने बनाया है। क्यों, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उनकी बात सुनकर भी शान ने उनके तरफ नहीं देखा, बल्कि उठकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से बोला, खाना बनाने का काम किसका है? उसने डरते हुए कहा, मेरा। शान ने फिर से गुस्से में सवाल किया, तो खाना तुमने क्यों नहीं बनाया? वो बेचारा सहमा हुआ अर्पिता जी को देखने लगा, तो अब वो उठकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, क्योंकि हमने उन्हें मना किया था, अगर आपको कुछ कहना है तो हमसे कहिए। शान ने उनकी बात सुनी और शिकायती लहजे में बोला, बड़ी माँ, उसने इतना कहा ही था कि अर्पिता जी ने गुस्से में आगे कहा, आज हमारी बहू की पहली रसोई की रस्म है और आप पहले ही बहुत तमाशा कर चुके हैं जिससे उनका दिल दुख गया है। हम नहीं चाहते कि अब आप उन्हें और हर्ट करें। हमने कहा था उन्हें खाना बनाने, और ये हमारा घर है, तो ये फैसला लेने का हक आज भी हमारा है कि कौन क्या काम करेगा। अगर आपको कुछ कहना है, कोई शिकायत है, तो हमसे कहिए, बात कीजिए, पर अभी नहीं। अभी आप बैठकर चुपचाप खाना खाइए, और अगर नहीं खाना तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ और तमाशा नहीं चाहते, क्योंकि आपको तो अपने गुस्से के आगे ये तक नहीं दिख रहा कि यहाँ मेहमान भी हैं, नौकर भी हैं, और आप सबके सामने अपनी पत्नी को बेइज्जत कर रहे हैं। उनकी छोड़िए, आपको ये तक नहीं दिखा कि यहाँ आपसे बड़े भी मौजूद हैं। आपकी बेटी भी है और उनके सामने ही तमाशा करने में लगे हैं। अगर आप हमारे फैसले के खिलाफ हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब हम आपको अपनी बहू की और बेइज्जती नहीं करने देंगे। शान ने गुस्से में आरवी को देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने नजर उठाकर उसे देखा तक नहीं। शान उसको घूरते हुए वहां से जाने लगा तो रेहान उसको रोकते हुए बोला, शान यार, खाना तो खा ले, इतना भी क्या गुस्सा है? शान ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं खाना कुछ। अब मेरे ही घर मुझसे ज्यादा जरूरी कल की आई वो लड़की हो गया है सबके लिए। उसके लिए मुझे जाने के लिए कह दिया तो ठीक है, उसे ही रखिए इस घर में, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा। वो अब आगे बढ़ गया। उसकी बात सुनकर सब शॉक्ड हो गए थे। अब सुयश जी ने सख्त आवाज में कहा, शान जहाँ है वहीं रुक जाइए। शान के कदम रुक गए पर वो नहीं पलटा। सुयश जी ने पीछे से उसे देखते हुए कहा, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर कहाँ जाना चाहते हैं आप? अब ये परिवार मेरा नहीं रहा। आप सबके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी वो लड़की है तो उसके साथ रहिए, मेरी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। शान पलटा। उसे नाराजगी जाहिर करते देखकर सुभाष जी ने गंभीरता से कहा, शान आप बेकार में इतना गुस्सा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने गुस्से के लिए अपने पिता को, अपने परिवार को छोड़कर जाना चाहते हैं तो ठीक है, जाइए, हम आपको रोकेंगे नहीं। पर अगर आपके जाने के बाद हमें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार होंगे आप। डैड, शान तड़प गया। उसने इतना कहा ही था कि सुभाष जी ने उसकी बात काटकर आगे कहा, आप जानते हैं आप हमारी जीने की वजह हैं। अगर आप भी हमें छोड़कर चले जाएंगे तो आप खुद सोचिए किसके लिए जिंदा रहेंगे हम। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको जो फैसला लेना हो ले सकते हैं।
शान कुछ पल खड़ा उन्हें खाली आंखों से देखता रहा, फिर वापस जाने के लिए मुड़ गया तो सब हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेगा। सबके चेहरे मुरझा गए। आरवी की आंखों से आंसू बहने लगे। शान दो कदम आगे गया ही था कि फिर उसके कदम रुक गए। उसने वहीं खड़े हुए ही कहा, रेहान जल्दी ऑफिस पहुंच, आज डैड को चेक करने डॉक्टर सिन्हा आने वाले हैं और मुझे उससे पहले घर वापस आना है। उसकी बात सुनकर सबका चेहरा एकदम से खिल उठा। अगले ही पल शान ने आगे कदम बढ़ा दिए तो रेहान ने फिर से पीछे से कहा, शान ब्रेकफास्ट कर लेना, साथ में ही चलेंगे। शान ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, तुझे ब्रेकफास्ट करना है तो कर ले, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। आरवी ने झट से अंशिका के कान में कुछ कहा। इसके साथ ही शान के कानों में अंशिका की आवाज पड़ी, डैडी। शान के आगे बढ़ते कदम रुक गए। अपने गुस्से में वो ये तो भूल ही गया था कि अंशिका भी वहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अंशिका ने अब आगे कहा, डैडी अंशु को आपके हाथ से फूड ईट करना है। ये सुनने के बाद शान के कदम आगे नहीं बढ़ सके। अंशिका में उसकी जान बसती थी, उसने आज तक उसकी हर विश पूरी की थी, बस एक मम्मा लाने की बात को नजरअंदाज कर देता था। वो अब भी नहीं पलटा तो अंशिका ने आगे कहा, डैडी आप मम्मा से एंग्री हैं तो क्या आप बेबी से एंग्री हैं? शान अब एकदम से पलट गया और तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं बेटा, आपके डैडी आपसे कभी एंग्री नहीं हो सकते, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप तो उनकी जान है, आपके लिए तो वो जिंदा है। अब सबने चैन की सांस ली। अंशिका अपनी चेयर पर खड़ी हो गई और उसने अपनी बाहों को फैला दिया। शान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया तो अंशिका ने मासूमियत से आगे कहा, डैडी। शान ने बड़े प्यार से कहा, हाँ बेटा। अंशिका ने अब आगे कहा, डैडी मम्मा ने बहुत मेहनत से खाना बनाया है, थोड़ा सा खा लीजिए अंशु के लिए। उसकी बात सुनकर शान की भौहें तन गई। उसने गुस्से से आरवी को घूरा तो उसने अपना सर झुकाकर धीरे से कहा, आपको नफरत मुझसे है तो खाने से कैसी नाराजगी? माँ कहती है घर से खाली पेट निकलना अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा खा लीजिए, घर में कुक भी तो खाना बनाता है, समझ लीजिए कि उन्हीं ने बनाया है। अपनी पत्नी नहीं मान सकते तो नौकर समझकर ही सही, पर खाना खा लीजिए। अगर आप मेरे वजह से भूखे पेट जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आज के बाद कभी किचन में कदम भी नहीं रखूंगी, बस आज आज खा लीजिए। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। रश्मि का तो दिमाग थप्पड़ गया था ये सब देखकर, वो हैरान परेशान सी सब देख रही थी। आरवी की बात सुनकर अर्पिता जी कुछ कहने को हुई पर आरवी ने इशारों में ही उन्हें चुप रहने को कह दिया। शान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, तो कोई झूठी उम्मीद मत बांध लेना। इतना कहकर वो अपनी चेयर पर बैठ गया। आरवी ने बाकी सबको बैठने के लिए कह दिया तो वो सब भी उदास से बैठ गए। रश्मि तो बस उसे ही देखे जा रही थी। आरवी ने उसे अभी चुप रहने का इशारा कर दिया तो वो भी बैठ गई, पर अब उसका खाने का मूड नहीं था। आरवी खाना सर्व करने लगी। जैसे ही वो शान के पास आई, शान ने अपना हाथ आगे करके कहा, तुम नहीं दोगी। अब उसने सौरभ को देखा तो वो आगे आकर उसे खाना सर्व करने लगा। ये देखकर आरवी का चेहरा उतर गया, वो एक तरफ खड़ी हो गई तो सुयश जी ने उसे देखते हुए कहा, बेटा आप ही बैठिए, मैं बाद में खा लूंगी बड़े पापा। आरवी ने इतना कहा और वहीं खड़ी रही। बाकी सब बैठे बैठे उसे ही देख रहे थे, जबकि शान खामोशी से अंशिका को खाना खिला रहा था। उसने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला। अंशिका ने ही उसके तरफ निवाला बढ़ाया तो उसने वो निवाला खा लिया और उठकर खड़ा हो गया। फिर वो आरवी की तरफ बढ़ गया तो सबब सवालिया नजरों से उसे देखने लगे कि पता नहीं अब क्या करने वाला है। शान ने अपने पॉकेट से वॉलेट निकाला और उसमें से पैसे निकालकर आरवी की हथेली पकड़कर उसमें थमाते हुए कहा, घर में कुक को खाना बनाने के पैसे मिलते हैं, ये आज का तुम्हारा मेहनताना। इतना कहकर वो रेहान की तरफ मुड़ा और सख्त लहजे में बोला, आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंच जाइयो, वरना अगले दो दिन तुझे सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं दूंगा। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। आरवी आंखों में आंसू भरे अपनी हथेली में रखे पैसों को देखती रह गई। शान उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। टू बी कंटिन्यूड।